बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान में हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। इसी सिलसिले में मंगल को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सदारत में एक इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, डायरेक्टर जनरल ISI, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और DG मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़ीर दाखिला और चारों सूबों के पुलिस सरबराहान और कुछ दीगर आला रुतबा अहदेदारों ने भी शिरकत की। पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक इजलास में तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात का अमल ख़ास तौर पर ज़ेर बहस रहा। यह ऐसी हालत में है कि अभी हुकूमत और तालिबान शूरा के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात की जगह के तायुन के हवाले से कोई इत्तेफाक नहीं हो सका है। इसके साथ ही तालिबान के कुछ मुतालिबात भी सामने आए हैं, जिनमें आम माफ़ी, तमाम कैदियों की रिहाई और कबाइली इलाकों से फ़ौज की वापसी के मुतालिबात काबिल ज़िक्र हैं। तालिबान मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह मौलाना समीउल हक ने यह भी कहा है कि कबाइली इलाकों से फ़ौज हटाने के साथ ही नाके और चेक पोस्टें भी ख़त्म की जाएं, ताकि तालिबान आज़ादी के साथ नकल व हरकत कर सके। तालिबान के मुतालबात के सिलसिले में पाकिस्तान की सियासी और सहाफ़ती बिरादरी मुनकसिम नज़र आती है। तालिबान के साथ मुज़ाकरात के अमल की वकालत करने वाले हलके का कहना है कि तालिबान के ये मुतालबात वैसे ही हैं जिन्हें दूसरे मुल्कों में तस्लीम करके अमन कायम किया जा चुका है। बेनावरी हुकूमत को तालिबान के ये मुतालबात तस्लीम कर लेने चाहिए, जबकि बाज़ दीगर हलकों ने इन मुतालबात की मुखालफत की है और उनका कहना है कि कबायली इलाकों से फ़ौज की वापसी और नाकों और चेक पोस्टों को ख़त्म करना कबायली इलाके तालिबान को वागुजार करने के मुतरादिफ होगा। इन हलकों का यह भी कहना है कि कबायली इलाकों में तालिबान पाकिस्तान के साथ ही दूसरे मुल्कों के दहशतगर्दों की बड़ी तादाद भी मौजूद है, जिन्हें कबायली इलाकों में नकल व हरकत की आज़ादी किसी भी तरह नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें नकल व हरकत की आज़ादी देने का मतलब कबायली इलाकों को दुनिया भर के दहशतगर्दों के लिए महफूज बनाना होगा, और ये बात न पाकिस्तान की सालमियत के लिए मुनासिब है और न ही उसकी बैनुल-अक़वामी शबीह के लिए। आम माफ़ी और तमाम तालिबान कैदियों की रिहाई की मुखालफत करते हुए इन हलकों का कहना है कि जो तालिबान कैदी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों हत्ता पाकिस्तानी अफवाद के कत्ल में मुलव्वस रहे हैं। उनकी रिहाई का मतलब उन तमाम बेगुनाह शहरियों और अफवाज पाकिस्तान के अहलकारों के खून की बेहुरमती और तौहीन होगी जो उनके हमलों में शहीद हुए हैं। इसके साथ ही बाज़ कालमनविसों ने मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त के नस्बत शकूक व शुबहात का भी इजहार किया है। हत्ता बाज़ कालमनविसों ने यहाँ तक लिखा है कि तालिबान के मसले का हल सिर्फ फौजी ऑपरेशन के ज़रिए उनका खात्मा है। इन हलकों का कहना है कि सरंजाम तालिबान के मसले से निजात पाने के लिए हुकूमत को यही रास्ता अख्तियार करना होगा। आज के प्रोग्राम में हम पहले इस बात का जायज़ा लेंगे कि तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात का अमल किस मरहले में है। मंगल को इस्लामाबाद में होने वाले आला सतही सिक्योरिटी इजलास में तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से क्या फ़ैसला किया गया। बाज़ रिपोर्टों में बताया गया है कि तालिबान शिमाली वज़ीरिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। इन रिपोर्टों की हकीकत क्या है, और अगर ये रिपोर्टें सही हैं तो इसकी वजह क्या है। इसके साथ ही हम तालिबान के मुतालबात के बारे में भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की राय मालूम करेंगे, लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तालिबान के साथ जो मुज़ाकराती अमल शुरू किया था वो अब नए मरहले में दाखिल हो गया है, और तवक्को है कि हुकूमत पाकिस्तान की मुकर्रर करदा नई मुज़ाकराती टीम तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करेगी। इस्लामाबाद में तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कायम हुकूमती कमेटी के अरकान हबीबुल्ला खटक, फवाद हसन फवाद, अरबाब आरिफ और रुस्तम शाह मोहम्मद ने वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से मुलाकात और गुफ्तगू की है, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बराह रास्त मुज़ाकरात की हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई और तय किया गया कि आइंदा 48 घंटे में मुज़ाकरात के लिए जगह का तायुन कर लिया जाएगा। یہ بھی کہا گیا ہے کہ بات چیت کے لیے کسی ایسی جگہ کا چناؤ کیا جائے گا جہاں آسانی سے رسائی ممکن ہو۔ طالبان کی رابطہ کار کمیٹی کے رکن پروفیسر ابراہیم کا بیان بھی سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ طالبان شمالی وزیرستان میں مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان جنوبی وزیرستان کی تحصیل لدھا اور مکین میں مذاکرات کے حامی ہیں، جبکہ حکومت پولیٹیکل ایجنٹ شمالی وزیرستان کے دفتر ایف آر بنو اور بنو ایئرپورٹ پر مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے منگل کے روز پاکستان کے وزیراعظم کی صدارت میں اعلیٰ سول اور فوجی حکام کا اجلاس ہوا تھا، جس میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے معاملے پر خاص توجہ دی گئی۔ اس اجلاس میں پاکستانی فوج کے سربراہ، چیف آف جنرل اسٹاف، ڈی جی ملٹری آپریشن اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور پولیس سربراہوں کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ بھی شریک تھے۔ بظاہر اس اجلاس کے بارے میں عام خیال یہی ہے کہ دو مخالف جماعتوں کی حکومتوں کے حامل صوبوں سندھ اور خیبر پختونخوا سمیت فیصلوں پر عمل درآمد کے تعلق رکھنے والے تمام حلقوں کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ طالبان سے مذاکرات سمیت قومی سلامتی سے تعلق رکھنے والے معاملات میں فوجی اور سیاسی حلقے ایک ہی صفحے پر موجود ہیں۔ جہاں تک طالبان کے مطالبات کا تعلق ہے تو اس حوالے سے بھی پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں بہت کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ تاہم طالبان کی رابطہ کار کمیٹی کے سربراہ مولانا سمیع الحق نے جو ممکنہ مطالبات پیش کیے ہیں ان میں طالبان قیدیوں کی رہائی، عام معافی کے اعلان اور قبائلی علاقوں سے فوج کی واپسی بھی شامل ہے۔ بہرحال طالبان کے ساتھ مذاکرات کے معاملے پر پاکستان کی رائے عامہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حامی اور مخالفین اپنے اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لاتعداد دلیلیں اور تاویلیں پیش کر رہے ہیں۔ مذاکرات کی حمایت کرنے والے حلقوں کا کہنا ہے کہ طالبان کے زیادہ تر مطالبات منطقی ہیں اور انہیں قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالبان جنگجوؤں کے لیے عام معافی اور قیدیوں کی رہائی کے مطالبات ویسے ہی ہیں جیسے مطالبات کئی دیگر ممالک میں تسلیم کر کے داخلی تنازعات کو کامیابی کے ساتھ نمٹایا جا چکا ہے۔ اس قسم کے فیصلے پائیدار امن کی خاطر کیے جاتے ہیں تاکہ جنگجو عناصر نارمل زندگی کی طرف آ سکیں اور آئین اور قانون کی بالادستی تسلیم کر لیں۔ مذاکرات کے مخالفت کرنے والے طالبان کے مطالبات کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ان حلقوں کا کہنا ہے کہ طالبان ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس کے لاتعداد ذیلی گروپ ملک میں سرگرم ہیں، جن میں سے بعض پر خود اسے بھی اختیار نہیں ہے۔ احرار الہند نامی گروپ اس کی واضح مثال ہے، جو مذاکراتی عمل کے دوران ہونے والے بم دھماکوں اور دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کرتا رہا ہے۔ پاکستان کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں خاص طور سے قبائلی علاقوں سے فوج کے انخلا کے مطالبے پر گہری تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان حلقوں کا خیال ہے کہ قبائلی علاقوں سے فوج کی واپسی اور حتیٰ چیک پوسٹوں اور ناکوں کے خاتمے کے مطالبے کا واضح مطلب یہ ہے کہ طالبان قبائلی علاقوں کو 9/11 سے پہلے والی صورتحال پر واپس لانا چاہتے ہیں، جب ان علاقوں میں ملکی اور غیر ملکی دہشت گرد گروہوں کو، جنہیں اس وقت مجاہدین تصور کیا جاتا تھا، نقل و حرکت کی مکمل آزادی تھی۔ کیا پاکستان دوبارہ کسی ایسی صورتحال کا متحمل ہو سکتا ہے جس نے اس کی معیشت کی چولیں ہلا دی ہیں، قومی یکجہتی کو تار تار اور اس کے عالمی کردار کو بری طرح سے مس کر کے رکھ دیا ہے؟
ناظرین، طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ہمارے آج کے پروگرام میں لندن اسٹوڈیو سے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر علی جعفر زیدی اور کراچی سے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار عرفان علی حصہ لیں گے، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کی بحث میں شامل کیا جائے گا جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنما عبدالغفار عزیز کو۔ تو پہلے لندن اسٹوڈیو چلتے ہیں، جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر علی جعفر زیدی موجود ہیں۔ زیدی صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
زیدی صاحب، حکومت پاکستان اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی کوششیں کافی عرصے سے جاری ہیں، لیکن مذاکرات باضابطہ تاحال شروع نہیں ہو سکے ہیں۔ آپ کے خیال میں تاخیر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
یہ موضوع بجائے خود، یعنی حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا جو موضوع ہے، یہ بجائے خود ایک غیر سنجیدہ اور ایک مذاق خیز قسم کا موضوع ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور پاکستان کی حکومت کس طرف فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور کچھ فیصلے اس نے کر لیے ہیں۔ یہ مذاکرات جو ہیں، یہ پاکستان کے عوام کو ایک ایسی صورت حال میں مبتلا رکھنے کے لیے ہیں کہ وہ اس تمام معاملے پر نہ کرٹیسائز کریں، نہ اس پہ نظر رکھیں، نہ اس پہ گفتگو ہو جو اس وقت کے حکمران عالمی سامراج اور بالخصوص سعودی عرب کے ساتھ مل کر مڈل ایسٹ کے بارے میں کرنے جا رہے ہیں. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسرا یہ تاخیر اور یہ کس وقت ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، یہ ایک ایسے حربے ہیں جس میں قوم کو الجھایا گیا ہے، قوم کو آج تک بے وقوف بنایا گیا ہے، اور سادہ لوگ ہیں جو اس وقت اس ساری بحث میں شامل ہو جاتے ہیں. وہاں کی جو مڈل کلاس ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے، وہ جتنے ٹی وی اینکرز کی ڈسکشنز ہیں اس کو سنجیدہ سمجھ کر اس پہ بحثیں کرتے رہتے ہیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں 100 ملین ڈالر سے بھی زیادہ جو پیسہ ہے امریکن، وہ ٹی وی چینلز کو مہیا کیا جا رہا ہے، اور جو وہاں پاکستان میں جو بھی اس وقت مذاکرات ہیں، صورتحال ہے، اس کو انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں رکھ کر دیکھنا چاہیے. صورت یہ ہے کہ دنیا پہ امریکہ نے عالمی جنگیں مسلط کی ہوئی ہیں، بالخصوص مڈل ایسٹ میں، اور اب جو ہے نئی ڈیولپمنٹ یوکرین کے حوالے سے. تو امریکہ کو اور سعودی عرب کو بالخصوص مڈل ایسٹ میں دہشت گرد چاہیے. دہشت گرد کی پناہ گاہ اس وقت پاکستان ہے، جو کہ حکمران جو اس وقت حکمران ہیں ان کی سرپرستی میں یہ دہشت گرد پلتے ہیں. وہاں کی دستگاہوں میں یہ بم ساز فیکٹریاں ہیں چلتی پھرتی انسانوں کی، سعودی عرب فائنانس کرتا ہے. ساری دنیا پہ اب یہ واضح ہو چکا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان دہشت گردوں کے کیا عزائم ہیں اور ان کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے. جیل ٹوٹتی ہے پاکستان کی تو وہاں سے وہ 600 کچھ جو ہیں وہ جا کر پہنچتے ہیں ترکی میں، اور جب ان کی لاشیں 80 لوگوں کی واپس آتی ہیں تو اس دن پاکستان میں سارا ٹی وی، وہ ایک آدمی اپنی بیوی کو یرغمال کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ٹی وی اور اینکرز اور ساری ڈسکشن ادھر ہو جاتی ہے، جبکہ وہ 80 لاشیں فوج کی نگرانی میں اپنے ان کے علاقوں میں چلی جاتی ہیں، اور ان کا زیادہ تعلق سپاہ صحابہ سے ہے، سب دنیا جانتی ہے. تو یہ ساری ڈرامے بازی ہے، یہ مذاکرات وذاکرات کچھ نہیں ہیں. یہ طالبان اور یہ حکمران جو ہیں، یہ ایک ان کا ایجنڈا ہے. اس میں مسئلہ اس وقت جو ہے وہ فوج اس کو کیسے لیتی ہے یا کیسے ریئیکٹ کرتی رہی ہے، کیونکہ فوج کے جو افراد ہیں وہ بہت مارے گئے، اور فوج اس میں کس حد تک انوالو ہونا چاہتی ہے ان فیصلوں میں، یہ ایک رکاوٹ ہے. ورنہ سعودی عرب کے ساتھ شریف برادران کے تعلقات اور سعودی عرب کے مڈل ایسٹ میں اس وقت جو مفادات ہیں، اور بالخصوص ایران کے خلاف جو وہاں سارا معاملہ ہو رہا ہے، اور شام کے خلاف، اور جو گندا کردار ہے اس وقت سعودی عرب کا مڈل ایسٹ میں، اس گندے کردار میں پاکستان کے حکمران شامل ہونے جا رہے ہیں. اور وہ معاملہ جو ضیاء الحق نے شروع کیا تھا اور آج تک پاکستان اس کی قیمت پے کر رہا ہے، یہ نواز شریف جس طرف جا رہے ہیں، آنے والی نسلیں معلوم نہیں کب تک اس فیصلے کا نقصان ادا کرتی رہیں گی جو یہ مڈل ایسٹ میں کے گند میں یہ پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں. اور یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، ضیاء الحق کی ہی یہ واقعات ہیں، یہ پیداوار بھی اسی کے زمانے کی ہیں، اور ان کے سعودیز حکمرانوں کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی ہیں، سوشل تعلقات بھی ہیں. تو یہ سعودی ایجنڈا ہے جس پر یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ مذاکرات وغیرہ تو ایسی ہی ایک اشک شوئی، ایک دنیا کو اور پاکستان کے عوام کو ایسے ہی ایک بیوقوف بنانے کی بات ہے. اگر آپ دیکھیں جو مطالبات ہیں اس وقت طالبان کے، وہ کیا ہیں کہ دہشت گرد جو ہیں ان کو چھوڑا جائے. وہ کیوں چھوڑا جائے؟ اس لیے کہ وہاں سے چھوڑ کر وہ اس وقت چونکہ جو دہشت گردی کی منڈی میں طلب اور رسد کا معاملہ ہے، تو طلب بہت بڑھ گئی ہے اگینسٹ سیریا، اگینسٹ یوکرین، के जो सूरत हाल है उसमें यूक्रेन में इसको इस्तेमाल किया गया है। चेचन के बहुत से लोग जाके वहाँ लड़े हैं और लोगों को उन्होंने मारा है। तो जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है उसमें ये दहशतगर्द उनको चाहिए, आलमी साम्राज्य को, और पाकिस्तान की हुकूमत इनको रिलीज करना किसी ना किसी तरह चाहती है, और वो मुज़ाकरात के जरिए इन दहशतगर्दों को रिलीज करेगी, और ये जाकर शाम में भी लड़ेंगे और ये जाकर रूस के अगेंस्ट भी लड़ेंगे और यमन में भी ये लड़ेंगे। और ये बहुत गंदा खेल है जिसमें पाकिस्तान का असला भी पाकिस्तान की तरफ से जाएगा और ये दहशतगर्द भी जाएंगे, क्योंकि फौज डायरेक्टली नहीं जाना चाहती। तो अगर फौज नहीं जाएगी तो ये दहशतगर्द जो वहाँ के दरसगाहों में पलते हैं और हजारों में पैदा हो रहे हैं, और ये खास तौर पे ये जो तालिबान के ट्रेंड दहशतगर्द हैं, ये सारे वहाँ पर इस्तेमाल होंगे। तो इस सूरत हाल में ये सारे मुज़ाकरात का ऐसी ढकोसला है, और दुनिया को बेवकूफ़ बनाने, बाहर की दुनिया को तो नहीं बना सकते, पाकिस्तान के अवाम बेचारे इसमें उलझे हुए हैं। मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और बेचारे रोज मारे जाते हैं, लोग उनको रोज निशाना, मस्जिदें भी बनती हैं, इमाम बारगाहें भी बनती हैं, और जितनी मजहबी दीनी जमातें हैं वो उस पे खामोश भी रहती हैं, एहतजाज भी करती हैं, तालिबान को कंडेम नहीं करती, उनके जो एक्शंस हैं उसको कंडेम नहीं किया जाता कई मजहबी जमातों की जानिब से। तो ये सारा मिला हुआ मामला है, और ये आलमी साम्राज्य का खेल है जिसमें पाकिस्तान एक बहुत ही गंदा किरदार अदा करने जा रहा है दोबारा से। जो ज़ियाउल हक ने बीज बोया था वो आज तक फसल कट रही है, खून बह रहा है पाकिस्तान में, और ये जो होगा इसका नतीजा मालूम नहीं क्या होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब। और नाज़रीन चलते हैं कराची, जहां पाकिस्तान के एक और तज़िया निगार इरफान अली साहब मौजूद हैं। इरफान अली साहब, जनाब तालिबान के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात का अमल किस मरहले में है? इरफान अली साहब तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंची है। जैदी साहब, ये मंगल को जो इस्लामाबाद में इजलास हुआ है उसके हवाले से मुतजाद बातें सामने आई हैं। बाज़ हलकों ने उन इस इजलास के हवाले से ये लिखा है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात के ताल्लुक से हुकूमत यानी चारों सूबों की हुकूमतें, सिक्योरिटी इदारे, अफवाज पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत ये सब मुत्तफिक हैं, एक सफ़े पर हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ़ बाज़ तजिया निगारों ने ये लिखा है कि अगरचे तस्वीरें जो शाया हुई हैं उसमें ये जाहिर करने की कोशिश की गई है कि हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान में मुकम्मल हमाहंगी पाई जाती है तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। आप क्या कहते हैं इस बारे में?
मैं समझता हूँ ये हकीकत बिल्कुल बरक्स है। फौज उस तरह से शामिल नहीं होना चाहती जिस तरह से नवाज शरीफ उनको शामिल करना चाहते हैं बैरूनी महाज पर, और ख़ास तौर पे ये जो ये डील्स हुई हैं अभी और 1.5 बिलियन डॉलर्स मुल्क में आए हैं, आर्मी उसमें उस तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती जो हमारी इत्तलात हैं। वो शायद असला मुहैया करने तक और असला बेचने की हद तक तो शायद शामिल हों, और अभी ये तय नहीं हो पा रहा कि असला सऊदी अरब जाएगा या जॉर्डन जाएगा या किस जरिए से ये जाएगा अगेंस्ट सीरिया। तो आर्मी की और जो इस वक्त सिविल हुकूमत है उसके दरमियान बहुत से इश्यूज़ पर तहफ़ुज़ात हैं आपस में, और उसमें इनका जाना भी रहा, वहाँ सऊदी अरब से आना भी रहा, अभी यमन से भी मामलात कुछ हो रहे हैं, बहरीन से आ रहे हैं लोग। तो ये सारा जो इस वक्त खेल है इसमें मैं समझता हूँ कि आर्मी शायद उस तरह से शामिल नहीं होना चाहती या नहीं है जिस तरह से कि उसका तासुर दिया जा रहा है, और आर्मी अगर इसमें शामिल हुई तो ये फिर पाकिस्तान के लिए बहुत بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ آرمی افورڈ کر سکتی ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں وہ ایک کردار ادا کرے.
جی زیدی صاحب، یہ جو مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کے ایک معروف کالم نویس اور ٹی وی اینکر ہیں، انہوں نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کہیں نواز شریف صاحب چودھری شجاعت نہ ثابت ہوں، جس طرح سے پرویز مشرف نے چودھری شجاعت کو مشن دیا نواب اکبر بگٹی کے ساتھ مذاکرات کا، انہیں مذاکرات پر بھیجا اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان پر حملہ کر دیا. تو یہ خدشہ جو ظاہر کیا گیا ہے، یہ کس بنیاد پر ہو سکتا ہے؟ بھائی نواز شریف کو طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے کون بھیجے گا، اور کون ان سے بالا تر کون ہے پاکستان میں؟
میں طالبان کو، یعنی طالبان بھی تو بہت سے ہیں، اس میں کئی گروپس ہیں، اس میں وار لارڈ بھی شامل ہو گئے ہیں، چونکہ بے شمار پیسہ انوالوڈ ہے، لیکن جو بہت سے طالبان ہیں اور نواز شریف، یہ ایک دوسرے کا حصہ ہیں، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہیں. ان کی پنجاب میں حکومت طالبان کو سپورٹ کرتی رہی ہے، اور ان کی مرضی سے وہاں پر جو درسگاہیں ہیں وہاں پر یہ دہشت گرد آج بھی پل رہے ہیں، اور پنجاب بچا رہا ابھی تک، لیکن کل تک بچے گا یا نہیں ان کے ایکشن سے یہ نہیں معلوم. تو یہ نواز شریف اور طالبان تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور اس کے حوالے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آرمی کوئی ایکشن لے گی اور ان کے درمیان مذاکرات ناکام یا کامیاب کے ڈرامے بازی سے آرمی، میں نہیں سمجھتا کہ آرمی کوئی ایسا کوئی اس میں کوئی ایسا ایکشن لے گی جو شاید حکومت گرانے کی طرف جاتا ہو، یا تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی صورت ہوگی. البتہ آرمی اپنے آپ کو نواز شریف کے ساتھ مکمل طور پر جو یکجہتی ہے مڈل ایسٹ میں، شاید اس میں وہ اس طرح سے نہیں شامل ہونا چاہتی جس طرح کے سعودی عرب اور نواز شریف چاہتے ہیں.
جی زیدی صاحب، طالبان کے مطالبات کے حوالے سے پاکستان کے بعض کالم نویسوں نے لکھا ہے کہ یہ مطالبات کوئی نئے نہیں ہیں، یہ بالکل ویسے ہی مذاکرات مطالبات ہیں جنہیں دوسرے ملکوں میں پورا کر کے امن قائم کیا جا چکا ہے. اس حوالے سے میرا جو سوال ہے وہ یہ، جو مطالبات ہیں ان کے کہ تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، عام معافی کا اعلان کیا جائے، قبائلی علاقوں سے افواج پاکستان کو واپس کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر جو مولانا سمیع الحق نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستانی فوج قبائلی علاقوں سے واپس بلائی جائے، بلکہ وہاں ناکے اور چوکیاں اور چیک پوسٹیں بھی ختم کی جائیں تاکہ طالبان آزادی کے ساتھ نقل و حرکت کر سکیں. یہ جو مطالبات ہیں اگر یہ پورے کیے جائیں تو خاص طور پر افواج پاکستان کی واپسی کا، تو پھر قبائلی علاقوں میں پاکستان کی ریٹ کہاں رہے گی؟
جی بالکل، یہ جو آخری بات آپ نے کہی ہے، اصل بات ہی یہ ہے، طالبان کو اس علاقے میں ایک فری ہینڈ چاہیے، اور فری ہینڈ ان کو چاہیے ایسا جس پہ کسی کی نظر نہ ہو، فوج کی مداخلت نہ ہو. پاکستان کی ریٹ تو ویسے بھی ایز سچ نہیں ہے حکومت کی، تو انہیں وہ علاقہ بالکل اس طرح سے فری اس میں ہینڈ چاہیے تاکہ وہ سے مراد، یعنی جو بھی اس ایریے میں ایجنڈا اور نقشہ ہے عالمی سامراج کا اور سعودی عرب کا، وہ اپنا پورا کھیل بغیر کسی کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو کر وہ پورا کھیل کھیلیں. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت جو جنگیں مسلط کی ہوئی ہیں امریکہ نے، اور مڈل ایسٹ میں بالخصوص جو جنگیں مسلط کی گئی ہیں، لیبیا ہو یا ایجپٹ کی صورت ہو یا سیریا بالخصوص، تو اس میں اس وقت ان کو بہت بڑی تعداد میں دہشت گرد چاہیے. वो लोग वो किराए के सिपाही चाहिए या किराए के कातिल चाहिए जो वहां जाकर इनके जो अजाइम है, इनके जो एजेंडा है, उसको वो पूरा करें। और उसके लिए वो जगह बेस्ट है क्योंकि वहां से सेंट्रल एशिया करीब है, वहां से रूस को तंग करना आसान है, वहां से चीन को तंग करना आसान है, वहां से आपके नीचे आ जाएं तो ईरान को भी डिस्टर्ब करना आसान है, और फिर वहां से जो खेप है वो मिडल ईस्ट भेजना भी आसान है। अफगानिस्तान से जो सूरत हाल नई अब तब्दील होने जा रही है उसमें भी इनका एक रोल होगा। तो वो पूरा एरिया तालिबान को अपने मकासद के लिए चाहिए, जहां पर वो शरीयत के नफाज के नाम पर कत्लो गारत करने वाले जो अफराद हैं उनको वो पैदा करते रहें, मुसल्ला करते रहें, और दुनिया में जहां जहां दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी या आलमी साम्राज्य की दहशतगर्दी है, उसको वो वहां से जो रॉ मटेरियल है, जो इंसान है, जो जाकर ये इंसान जानवर नुमा इंसान जो कातिल और डाकू हैं, ये जाकर वहाँ इंसानों का खून बहाएं, और सारी दुनिया ने देखा हुआ है कि ये इंसानों के सर काट के फुटबॉल की तरह से फिर खेलते हैं उसके साथ। और यही हुआ है यूक्रेन में भी इस वक्त जो सूरत है, वहाँ जो हुक्मरान आए हैं वो फासिस्ट हैं और वो लोगों को धमकियां भी दे रहे हैं, मार रहे हैं। वहां पर भी ये जो दहशतगर्द हैं, सल्फीज दहशतगर्द मैं इनको कहूंगा, ये इन्होंने भी वहां पहुंचकर एक रोल गंदा किरदार अदा किया है। और मिडल ईस्ट की सारी सूरत में इनको चाहिए यहाँ से दहशतगर्द। अच्छा, और अफ्रीका में भी, अब नाइजीरिया में भी जो सूरत बन रही है वहां भी इनको ये नफरी चाहिए। तो ये एक ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड इनको वहां चाहिए जहां पर फौज की नजर ना हो, पाकिस्तान की हुकूमत की नजर ना हो, लोग आए, चेचन आए, यमन से आए, अरब आए, इधर से उधर से जमा हो, ट्रेनिंग लें। वो वही सूरत हाल जो कि सोवियत यूनियन के खिलाफ इन्होंने अमेरिका की जो जंग लड़ी थी इस्लाम के नाम पर, और वहां दुनिया भर से जो जिहादी जमा हुए थे, तो उसी तरह इन्हें ये सूरत हाल वहां की लोकेशन की चाहिए जहां पर ये सब आकर जमा हों, ट्रेनिंग लें, हिदायत लें, असला लें, और उसके बाद दुनिया में जाकर जहां जहां सऊदी अरब को और अमेरिका को जरूरत हो ये उनकी जाकर लड़ाई लड़ें और लोगों का कत्लेआम करें, हुकूमतें बदलें, हुकूमतें इंस्टॉल करें, और आम मासूम शहरियों का जो कत्लेआम है वो जारी रहे। और टिल सच टाइम के जो सऊदी प्लान है कि वो सल्फी हुकूमत कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ल्ड में कायम करना चाहता है, और ये एरिया है जो उसके लिए आइडियल है, वो समझता है। और आपके इल्म में होगा कि $1 बिलियन से अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटी बनेगी, जिसकी $1 बिलियन जो है वो सऊदी अरब उसकी मदद करेगा। और वो जो यूनिवर्सिटी है वो किसके लिए बनेगी? वो इन लोगों के लिए बनेगी। और तालिबान का जो जो सिलेबस है वो वेस्ट में तो सबको मालूम है, अखबारों में भी छप चुका, बहुत अरसा हुआ उस पर डिस्कशन भी हो चुकी, कि ये नेब्रास्का यूनिवर्सिटी से, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, नेब्रास्का से छप कर आता रहा, और तालिबान की ट्रेनिंग से लेकर और ये सिलेबस सारा अमेरिका और सऊदी अरब के साथ
बहुत
लिंक
बहुत
है।
शुक्रिया जैदी साहब
और आज तक
जी, शुक्रिया जैदी साहब। हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। इस वक्त हमारा राबिता जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अब्दुल गफ्फार अजीज साहब से बरकरार हो गया। अब्दुल गफ्फार अजीज साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार अजीज साहब जी, शायद राबिता मुनक़ता हो गया है इनसे। बहरहाल हमारी कोशिश ये है कि तालिबान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के किसी हामी से भी हमारा रबता बरकरार हो जाए, ताकि तालिबान के साथ मुज़ाकरात की हिमायत करने वालों का मौक़िफ़ भी सामने आ जाए। चलते हैं कराची, शायद इरफान अली साहब से रबता बरकरार हुआ। इरफान अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी इरफान अली साहब, अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी
जी,
अली जाफर
अस्सलाम वालेकुम,
जैदी साहब से, तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान के
अस्सलाम
दरमियान
वालेकुम, आपको मेरी
मुज़ाकरात
आवाज़
के
भी आ रही
हवाले
है?
से। जी जैदी साहब का ख्याल यह है कि यह जो सारा अमल है, जैदी साहब इसका तजिया उन्होंने किया है बैनुल अक़वामी हालात के तनाजुर में, आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में कि जो बैनुल अक़वामी हालात हैं, जैसे यूक्रेन के जो हालात हैं या शाम की जंग है या दीगर इलाकों में जो सूरत हाल है?
देखिए आप अपना सवाल वाजे करें क्योंकि बहुत सारी चीजें,
भाई देखिए यहाँ पर जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात हैं, जैदी साहब का ख्याल ये है कि इनका असल मकसद ये है कि यहाँ पे जो तालिबान के अफराद हैं और इससे वाबस्ता जो दूसरे दहशतगर्द ग्रोह हैं, इनके अफराद को दूसरे मुल्कों में भेजा जाए, यानी पुश्त पर्दा जो हदफ है, मकसद है, वो ये है कि अमरीका दोबारा इन दहशतगर्दों से काम लेना चाहता है
जी हाँ,
दूसरे
मतलब
मुल्कों में अपने
जैदी साहब
अहदाफ
जब
को
अगर कोई
आगे
बात,
बढ़ाने के लिए।
हाँ तो मतलब
तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्या आप भी ये समझते हैं या आपका तजिया तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान
जी
के
बिल्कुल,
दरमियान
मैं
100%
फीसद
के अमल के
मुत्तफिक
बारे
हूँ
में कुछ और?
और मैं मतलब जो है आपको बता दूं कि जैदी साहब पाकिस्तान को,
जी
लाइन कट गई यार, हेलो हेलो,
जी फरमाएं, आपकी आवाज आ रही है,
टू की आवाज शुरू हो गई,
आवाज आ रही है आपकी जनाब, इरफान अली साहब
हेलो।
आपकी आवाज आ रही है
तो
हम तक?
जो मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये है कि मतलब जैदी साहब एक अथॉरिटी है पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर, और उन्होंने पाकिस्तान में मतलब जो है उस दौर के अंदर मतलब रहते हुए काम किया है कि जिस दौर में ये जो जो आज जो हम अमल देख रहे हैं अपने उरूज पर उसको भुगता है उन्होंने खुद वहां रहते हुए,
जी
तो वो बिल्कुल 100% यही बात थी और है। लेकिन जो है इसमें आप कुछ चीजें पाकिस्तान और उससे पड़ोस से रिलेटेड भी देख लेंगे, मतलब चाइना मेरा ख्याल है कि शायद डिस्कस नहीं हुआ है यहाँ पर। चाइना को अगर आप देखें तो काशगर के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था और फिर जो है उसमें उन्होंने जो काशगर में जो दहशतगर्दी थी उसमें चाइना की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट पर इल्जाम लगाया था।
जी
फिर जो है इसमें खुद अमेरिका का जो मतलब जो हुकूमत में मुकमे खारजा में काम करने वाले हैं डेनियल मार्की, वो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन से भी वाबस्ता है, उन्होंने किताब लिखी थी टॉर्चर्ड रिलेशंस, यानी कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशन है उसके ऊपर, उसमें भी वो मतलब चाइना गए थे 2011 में, वहां उन्होंने वहां के लोगों से इंटरव्यू किए थे। तो चाइना की गवर्नमेंट परवेज मुशर्रफ से ज्यादा खुश थी कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, और लाल मस्जिद की कार्रवाई भी जो है चाइना के ही एक शहरी के किडनेपिंग के बाद शुरू की थी परवेज मुशर्रफ के दौर में। तो चाइना भी डिस्टर्ब है, ये बात कहने की है कि मतलब जो जिसको आप
जी
नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा आपके जो मतलब जो बिल्कुल इमीडिएट जो नेबरहुड है पाकिस्तान का उसमें इंडिया है। इंडिया को अगर आप देखें तो मसलन आप उसको नजरअंदाज इसलिए नहीं कर सकते कि अमेरिका इंडिया का इत्तेहादी है, जापान इंडिया का इत्तेहादी है, और जो है सऊदी अरब भी जो है इंडिया को तेल वगैरह देता रहता है, तो मतलब जो उसकी एक्सपोर्ट का जो है उसमें, और जो शाह अब्दुल्ला 2005 में शायद गए थे तो उन्होंने इंडिया को दूसरा मुल्क अपना करार दिया था कि मेरा दूसरा मुल्क इंडिया है। तो मतलब ये जो सिचुएशन है कि आप बयक वक्त जो है इन चीजों को मतलब जो है जहन में रखकर सोचें कि इंडिया भी डिस्टर्ब है, और इंडिया के साथ जो है मतलब हमें जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो कर्जा मिल रहा है वो जापान की वजह से मिलता है, मतलब जापान उसमें जो है वो मेजर डोनर है एशियन डेवलपमेंट बैंक में। तो मतलब IMF वर्ल्ड बैंक में तो अमेरिका की चलती है, इस्लामी दुनिया में जो है वो सऊदी अरब की चलती है, लेकिन जो है हमारे जो है बहुत सारे मंसूबे एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ चलते हैं। तो ये जो इक्वेशन बन रही है ना जो रीजन की, उसमें इंडिया को जो है उसके जो रोल है इस रीजन के अंदर उसको आप जो है कहीं से भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी हमसे शिकायत है। दूसरा ईरान को भी हमसे शिकायत है, अफगानिस्तान को वैसे ही है और अमेरिका वहां पर बैठा हुआ है। तो मामला ये है कि हम इस सूरत हाल में क्या ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं। मामला ये नहीं है कि मतलब इसको वो जो अमेरिका कहीं और लेके जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, मसला ये है कि मतलब हम खुद पाकिस्तान जो है 66 साल के अंदर मतलब जो है जो इस पॉलिसी को जो उसने अमेरिका और सऊदी अरब को साथ रखने वाली पॉलिसी रखी है जिसकी तरफ जो है इशारा किया है, अभी पैट्रिक कॉकबर्न ने भी किया है, और मेरा ख्याल है कि मैंने सुना नहीं लेकिन शायद जा 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 जैदी साहब वो अच्छा पॉइंट आउट किया हो कि 16 जो है इस मार्च को उन्होंने जो ये 5 सीरीज जो है मतलब सीरीज में 5 आर्टिकल्स लिखे हैं इंडिपेंडेंट में, उसमें भी बताया है कि जो जो असल जो प्रॉब्लम है जो इस रीजन का, वो अमेरिका सऊदी अरब और पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक अलायंस है, जो जो इस वजह इस जो जो मिलिटेंसी है उसको जो है फरोख देने का सबब बना है। अब ये है कि मतलब जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो अपनी पोजिशन क्लियर कर रही है कि हम इस जंग में उनका साथ दे रहे हैं, फिर वो उनकी तरदीद भी कर रही है कि जो है हम जो है अमेरिका के जो इल्जाम है नॉन कोऑपरेशन के वो हम पर गलत है, यानी कि ओसामा बिन लादन की हद तक तो उनकी बात ठीक है कि ओसामा बिन लादन को जो है अमेरिका ने खुद ही मतलब कहीं पर रखा हुआ था और जो है इनको लाया, लेकिन दूसरी बात यह कि अगर खुदा ना खास्ता वो पाकिस्तान में मौजूद था तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो मतलब जो डिफेंस लाइन है वो बहुत ही वीक है, यानी कि एबटाबाद जैसे ऐसे इलाके में जहां मिलिट्री का हेडक्वार्टर हो वहां पे उसकी मौजूदगी, अगर हम सिर्फ ये भी तस्लीम कर लें कि भले वो हमें अगर उसकी मालूम ना भी थी हमारे हुक्मरानों को और हमारी जो रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये जो चीज है ये खुद अपनी जगह एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान की स्टेट कैसे एग्जिस्ट करेगी कि जब जो है हमारी नाक के नीचे जो है एक दुश्मन एक दहशतगर्द बैठा हुआ हो। तो मतलब ये जो चीज होती है हमारी अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी होनी चाहिए थी जो नहीं है, जो हम शुरू से रोते रहे और इस दौर में जो है कि $1.5 अरब सऊदी अरब देकर जो है हमें खरीद रहा है, बहरेन आकर जो है हमें खरीद रहा है और पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा में बैठकर जो है पड़ोसी दोस्त मुल्कों के बारे में कमेंट कर रहा है, तो इससे मतलब ये साबित हो रहा है कि मतलब जो है आप जो कह रहे हैं वो आप कर नहीं रहे हैं, आपके जो है वर्ड्स डोंट मैच योर एक्शंस। तो जो है कोई भी हम पर एतमाद करने के लिए, हमारे अपने दोस्त एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरों को हम किस तरीके से जो है कन्विंस करेंगे कि हम जो है वाकई कोई साफ सुथरी जो है रिकॉर्ड रखते हैं इस हवाले से। मामला ये नहीं है कि उनको हमारी जरूरत है, मामला ये कि हमें किसकी जरूरत है, हमें ये देखना चाहिए और हमारे मफाद में क्या चीज है ये हमें देखना चाहिए। जो आप बात कर रहे थे ना कि तालिबान के हामियों से भी मौकफ ले लें, तो मैं आपको अभी बता दूं कि कल जो है हमारे यहाँ जो देवबंदी जो उलमा है देवबंदी जो मदारिस है उनकी जो वफाकुल मदारिसुल अरबिया है उनका एक जो है कॉन्फ्रेंस हुई है पैगाम अम कॉन्फ्रेंस जो मदारिस दीनिया की मुल्तान के अंदर, उनका एलामिया है कि मौजूदा हालात में नफाज शरीयत के लिए मुसल्ला जदोजहद शरई एतबार से गलत है। तो मतलब जो है ये जो बात कर रहे हैं कि मतलब ये आधा जुमला है, फिर वो कहते हैं कि मुजाकरात होने चाहिए। भाई जब जो है ये शरई एतबार से गलत है, वो कहते हैं कि दहशतगर्दी ने मुल्क को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इससे दुश्मन को फायदा हुआ, ये तीन जुमले कहने के बाद मुजाकरात की हिमायत कोई मंतिक है, कोई अकल है, कोई अदालत है, यानी कि कोई आदलाना मौकफ अपनाने की जरूरत है कि जब आप ये कहते हैं कि शरई एतबार से गलत है, इंसानी एतबार से गलत है, इस्लाम में कसास का कानून है, अगर जो है वो 60,000 अफराद को जो है बेगुनाह उन्होंने मार दिया किसी भी बहाने से, तो क्या वो किसास इस्लामी शरीयत में मतलब जो है क्या माफ कर दिया जाएगा? कौन माफ कर सकता है उसको? दैयत हो सकती है लेकिन वो भी जब जाके आप वर्सा को राजी करें, तो मतलब जो शरई एतबार से भी जब वो जो तीन जुमले जब ये मानते हैं कि शरई एतबार से गलत है मुसला जदोजहद, तो इसका मतलब ये है कि जो है तालिबान ने आज तक जो भी पाकिस्तान के अंदर किया है वो गैर शरई था, जो अपने लोग मारे हैं वो गैर शरई था, यानी कि अब अपने लोगों से मुराद मेरी ये है कि हम वतन पाकिस्तानी जो उन्होंने मारे वो गैर शरई था। तो मसलन जो है इसमें अब जो है कोई इभाम नहीं रहना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अली साहब। अब्दुल गफ्फार अजीज साहब से हमारा राबता बरकरार हो गया। अब्दुल गफ्फार अजीज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी राबता से मुनक़ता हो गया है। जी इरफान अली साहब, अभी आपने शाह बहरैन के दौरे के हवाले से बात की थी, शाह बहरैन के दौरे के हवाले से लाहौर में इस्लामाबाद में और शायद कराची के भी कुछ इलाकों में ख़ास तौर पे शिया मुसलमानों ने मुजाहरे किए हैं और हुकूमत तो ये इनकार करती रही है कि शाह बहरैन के साथ, खुद वज़ीर आज़म ने साफ कहा है कि फौज देने का लेने का ना मुतालबा किया गया है ना हमने फौज देने की का कोई मुआहदा किया है। लेकिन एक छोटी सी खबर आज नज़र आई है, जंग ऑनलाइन में है, वो ये कि बहरैन और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ है जिसके मुताबिक बहरैन पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत को ट्रेनिंग देगा और इससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला की आमदनी बढ़ेगी। इसको क्या समझा जाए? कि क्या शाह बहरैन के दौरे का मकसद भी पाकिस्तान से दहशतगर्दों को ले जाना है ताकि वो अपने यहाँ आवामी तहरीक को कुचल सके?
सेम जो है मेरी और आपकी जो है दिमाग जो है एक ही तरफ काम कर रहा था। मैं भी जब जो इन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज का नाम लिया था, कल मैंने इनका सुना था, जो कल की खबर थी, आज शायद जंग ऑनलाइन ने आज दी हो, लेकिन मतलब जो है कल मैं इसी पहलू पर गौर कर रहा था। और जो है इस बात पर आने से पहले मैं एक आपको बात बता दूं कि मसला जो है पाकिस्तान की जो मतलब जो हुक्मरान तबके का एक अलमिया है। डेनिस कुक्स जो है वो यूएस डिप्लोमेट थे, उन्होंने पाकिस्तान और जो है अमेरिका की एक हिस्ट्री लिखी है, यूएस पाकिस्तान रिलेशन, ये 47 से लेकर 2001 तक की है।
हम देख ले उनसे, उनकी बात भी हो जाए। जी अब्दुल गफ्फार अजीज साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, काफ़ी देर से आपसे रबता बरकरार करने की कोशिश की जा रही थी और बिल्कुल अख्ताम के वक्त आपसे रबता बरकरार हुआ है। तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगु हो रही थी, तालिबान के मुतालबात के बारे में आपकी राय क्या है?
मुतालबात तो खैर कुछ भी हो सकते हैं
जी।
मैंने आखिरी चंद लम्हों में आपके मेहमानों की गुफ्तगु सुनी है। तालिबान का जो भी नुक्ता नज़र है, आपको मालूम है कि वो जमात इस्लामी के नुक्ता नज़र से बहुत इख्तिलाफ रखते हैं, उनका तरीक़ेकार बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि बाहम बातचीत और मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता मुअस्सिर नहीं होगा। हम ऑपरेशन करके देख चुके हैं, सवात में भी पूरा कत्लेआम और लाखों लोग बेघर होके देख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो एक भूत है दहशतगर्दी का या खून रेजी का, वो अपनी जगह पे है। अभी हाल में जो जितनी कार्रवाइयां हुई हैं, इनसे तो तालिबान ने बरात का इजहार किया है, तो इससे भी एक सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या कोई तीसरा हाथ है जो इस पूरी आग को भड़काना चाहता है? अगर आप इनके साथ सीज फायर करने और किसी मुजाकरात के जरिए से किसी हल तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आप मुल्क में कोई एक ऐसी यकजहती या फिर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं कि जिसके बाद आपको बाकी दुश्मनों का मुकाबला करना आसान होगा। वगरना ये कहे कि जो भी गलती करे उसको बगैर उसके मौकिफ सुने और कोई उसको पुरमन करके समझाने
और हल करने के, बिल्कुल अख्तिताम पर आपसे राबता हुआ, 1.5 मिनट का वक्त हमारे पास रह गया है, अगर इसमें अपनी बात मुकम्मल कर लें तो शुक्रगुजार।
आपके साथ बिल्कुल सुन रहा था
जी। जी जनाब
जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुजाकिरात जो हैं उसमें शराइत तो तमाम अपनी अपनी है, इस वक्त तो अभी मुजाकिरात शुरू ही नहीं हुए। हुकूमत को बराह रास्त अपने जो मुतालिका जिम्मेदारान हैं उन्हें उसमें इन्वॉल्व करके 1-to-1 उनके साथ बात करना चाहिए। जो भी हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान के दस्तूर की रोशनी में उसके दायरा कार में रहते हुए पाकिस्तान के हर शहरी को इस दस्तूर का और कानून का एहतराम करते हुए किसी पीसफुल रास्ते तक पहुंचना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार अजीज साहब। इसी के साथ हम इरफान अली के भी शुक्रगुजार हैं और डॉक्टर अली जाफर जैदी के भी। बहरहाल तालिबान के साथ मुजाकिरात के हवाले से पाकिस्तान का एक बड़ा तबका है जो ख़ास तौर पर मजहबी जमातें मुजाकिरात की ख़ास तौर पर हमायत कर रही हैं, लेकिन इसके साथ ही बाज़ हलकों को इस सिलसिले में तहफ़ुज़ात भी हैं और वो तहफ़ुज़ात का बरमला इजहार भी कर रहे हैं। आइंदा प्रोग्रामों में हम अगर मुजाकिरात में पेशरफ्त हुई तो इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@thesahartv.ir। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।